SBS हिंदी।
मित्रों, जैसा आप जानते ही हैं, हाल ही में स्वघोषित स्पिरिचुअल आदमी, या यूं कहिए कि एक रिलीजियस पर्सन, आसाराम बापू को उम्र कैद की अंतिम सांस तक सजा सुनाई गई है। वो इसलिए कि उन्हें जोधपुर की कोर्ट ने 16 वर्षीय लड़कियों के रेप या बलात्कार के मामले में दोषी पाया है। अब आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक पीड़िता के वकील श्री पूनम चंद सोलंकी के साथ, जो हमें कई बातें बता रहे हैं। तो नमस्कार पूनम चंद सोलंकी साहब, आपका SBS हिंदी के प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं।
नमस्कार
सोलंकी साहब, ये बताइए कि आसाराम बापू को उम्र कैद हो गई है अंतिम घड़ी तक, और उन्हें दोषी पाया गया है बलात्कार के लिए, तो जिस लड़की के आप वकील थे उसकी उस वक्त क्या उम्र थी?
देखिए, जिस समय ये घटना हुई जोधपुर में, उस समय पीड़िता 16 वर्ष की आयु की थी, जो उसके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दर्शित थी, जो एज पर लॉ एडमिसिबल इन एविडेंस और कंक्लूसिव इन प्रूफ थी।
तो क्या वो वहाँ पर उनके किसी आश्रम में जाया करती थी या किसी गुरुकुल वगैरह में जाती थी? उसके परिवार भी होंगे?
यस, देखिए, ये पूरा परिवार, पीड़िता और उसका पूरा परिवार, उन्होंने आसाराम से दीक्षा ले रखी थी और आसाराम को वो भगवान की तरफ पूजा करते थे। पीड़िता और उसका छोटा भाई मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में अभियुक्त आसाराम की ओर से संचालित गुरुकुल के विद्यार्थी थे। तो पीड़िता और उसका छोटा भाई वहां पढ़ते थे। पीड़िता के परिवार को 6 अगस्त 2013 को घर पे फोन करके हॉस्टल की वार्डन शिल्पी, हु इज वन ऑफ द अक्यूज इन दिस पर्टिकुलर केस, उनके घर फोन करके कहा जाता है कि स्टार्ट चैंटिंग महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, क्योंकि कोई बड़ी समस्या है। तो उनको बहुत डर लगा और उन्होंने महामृत्युंजय का जाप किया। फिर 8 तारीख को वो छिंदवाड़ा गए, और छिंदवाड़ा जाने पर 9 तारीख को उस पीड़िता के पिता और माता को हॉस्टल वार्डन शिल्पी ने ये कहा कि आपकी बच्ची पर भूत का छाया है, आसाराम बापू से बात हो गई है, आप बापू के पास जाएं और इसको कहीं अन्य ना ले जाएं। और यही बात उस हॉस्टल के डायरेक्टर शरद, हु इज ऑल्सो वन ऑफ द को एक्यूज इन दिस पर्टिकुलर केस एंड हु हैज बीन सेंटेंस्ड, उसने भी यही कहा कि बापू से बात हो गई है, इस पर भूत का छाया, आप बापू के पास जाएं।
जी।
फिर वो उस बच्ची को लेके अपने शहर आ जाते हैं और वहां से पता करके बापू कहाँ हैं, अंत में उन्हें मालूम चलता है कि जोधपुर है। वो 14 अगस्त 2013 को जोधपुर आते हैं और 15 तारीख की, जो हिंदुस्तान की आजादी का दिन होता है, उस आजादी के दिन की रात्रि और 16 तारीख की रात्रि को ये उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है।
तो ये क्या कुछ कहा गया उस बच्ची को कि ये एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है, तुम पार हो जाओगी, भूत का साया निकल जाएगा, क्या कुछ ऐसा उसको कहा गया था बहकाने के लिए?
यस, ये एक्चुअल में ऐसा कोई इविल स्पिरिट नहीं थी, कोई भूत का साया नहीं था, बट उसको किसी तरीके से, इस तरीके से डरा कर आसाराम के पास भेजना, और आसाराम अनुष्ठान के नाम पर उसने इस बच्ची के साथ ये यौन दुराचार किया।
तो वकील साहब, आप इस केस से कब जुड़े?
मैं इस केस से जनवरी 2014 से मैंने इसके विक्टिम की बिहाफ पे जो है, मैंने अपना पावर, या यू कैन से वकालतनामा, ऑथराइजेशन लेटर फॉर द पर्पस ऑफ अपीयरेंस एंड प्लीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम, मैंने ट्रायल कोर्ट में फाइल किया, और तब से लेके आज तक मैं पीड़िता की तरफ से मैंने जो है वो ट्रायल कोर्ट में जोधपुर में अपनी अपीयरेंस दी और उसका केस कंटेस्ट किया, हाई कोर्ट में भी, राजस्थान हाई कोर्ट एट जोधपुर में भी, फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरियस एप्लीकेशंस हैव बीन फाइल्ड बाय अक्यूज्ड आसाराम एंड अदर को-अक्यूज्ड पर्संस, इन विच आई आल्सो अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम। टोटल नंबर ऑफ सच पिटीशंस आर 30 to 35, और लगभग 1-2 को छोड़कर सब में हमें सफलता मिली, वी गॉट सक्सेस, और सुप्रीम कोर्ट में भी अक्यूज्ड आसाराम की विक्टिम की तरफ से मैं जो है 8 times अपीयर हुआ हूँ।
जी। तो जजमेंट कहते हैं बहुत लंबा निकला है, 453 पेजेस का जजमेंट उन्हें दोषी पाया गया तब निकाला गया, उसमें क्या कहा गया है?
देखिए, जजमेंट वास्तव में बहुत लंबा है, रीजन्ड है, बहुत ही एक्सप्लेनेटरी है, इवन अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड ये जजमेंट क्या है। और इस जजमेंट का लंबा होने का एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत ही लेंथी क्रॉस एग्जामिनेशन हर एक विटनेस से, प्रोसिक्यूशन के विटनेस से, एक्यूज के द्वारा किया गया। मसलन जैसे मैं आपको बताऊं, जो विक्टिम है उस विक्टिम का क्रॉस एग्जामिनेशन 23 डेज तक चला था और 82 पेजेस का क्रॉस एग्जामिनेशन था। विक्टिम की मदर का क्रॉस एग्जामिनेशन 71 पेजेस का था और 17 दिन तक चला था। विक्टिम के फादर का क्रॉस एग्जामिनेशन 48 पेजेस का था, 16 दिन तक चला। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी उनका क्रॉस एग्जामिनेशन 176 पेजेस का पूरे एक साल तक अलग अलग डेज चलता रहा। टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो एक्यूज की तरफ से एग्जिबिट हुए ट्रायल कोर्ट में वो 225 हुए। तो ऑब्वियसली ट्रायल कोर्ट को सारी चीजों को डील करके एक बहुत ही रीजन जस्टिफाइड जजमेंट देना था, विच द कोर्ट हैज डिलीवर्ड।
तो इस पूरे मामले को वर्डिक्ट फैसला सुनाए जाने तक कितने साल लग गए हैं?
देखिए इस केस के अंदर जो एफआईआर हुई थी इट वाज ऑन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 20th and 21। ये सबसे पहले एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई थी, उसके बाद में जोधपुर भेज दी गई ऑन 21st of August 2013। देयर आफ्टर पुलिस आफ्टर थोरो इन्वेस्टिगेशन फाइल्ड चार्जशीट अगेंस्ट आसाराम एंड अदर अक्यूज्ड पर्संस ऑन 6th of November 2013। तो ट्रायल जो है वो उसके बाद में कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए अक्यूज आसाराम के खिलाफ और दूसरे अक्यूज के खिलाफ वो 13th of February 2014। तो 13th February 2014 से लेकर 25 अप्रैल 2018 तक लगभग 4.5 साल का जो टाइम लगा है, 4 years and 6 to 8 months ये ट्रायल में लगा है।
जी, और सजा जो उन्हें दी गई है उसका भी थोड़ा सा बयान दीजिए। हम तो यही पढ़ते हैं कि उम्र कैद दी गई है और अंतिम सांस तक जब तक, हाँ इसका बताइए।
एक्चुअली एक्यूज आसाराम एंड टू अदर एक्यूज पर्सन शिल्पी एंड शरद, ऑल दीज थ्री एक्यूज पर्सन हैव बीन कन्विक्टेड अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियन पिनल कोड इन विच 376D विच इज relating to the gang rape in which the minimum punishment is 20 years and the maximum punishment is rigorous imprisonment of life till last breath of natural life. तो जो accused आसाराम को जो है trial court ने life imprisonment till last breath of natural life, that is the maximum sentence has been imposed. And so far as the other two co-accused persons are concerned, they have been convicted with rigorous imprisonment of 20 years with a fine of ₹50,000 each.
Ji, theek. To defense ki aur se bhi
they have also been convicted under POXO.
To defense ki taraf se bhi kai gawah aaye honge.
Yes, 31 witnesses have been examined on behalf of these accused persons from the side of accused persons. And almost 225 documents were exhibited before the trial court.
And did Asaram apply for bail in between?
Yes, of course. He moved 6 bail applications from time to time on various dates, occasions for the Leonard trial court. All those bail applications have been paid. Then he filed bail applications before High Court and 3 times on 3 occasions. And those 3 bail applications have also been rejected. Then he filed 3 bail applications for Honorable Supreme Court and that too were rejected.
Achha.
For the purpose of arguing these bail applications and various applications filed during course of trial and also for the purpose of conducting trial, accused Asaram has engaged a battery of lawyers consisting of almost all the prominent lawyers of this country, including Ram Jethmalani, Swali Swarabji, Mukul Rohtgi, who was the Advocate General, KTS Tulsi, Vikas Singh, S. Jain, Salman Khurshid, who is a very famous Congress leader, Siddharth Luthra, शेखर नफाड़े, राजू रामचंद्रन सर, सुब्रमण्यम स्वामी हु इज बीजेपी लीडर, सीवी नागेश, के मनन एंड लाइक एंड अदर डॉक्टर्स एडवोकेट, सॉरी, सो द टोटल नंबर ऑफ एडवोकेट मोर देन 100.
तो ऐसा है कि आपने बताया कि जो पीड़िता थी उसके पिताजी माताजी को कई कई दिनों तक प्रमाण देने पड़े, एविडेंस देना पड़ा, तो क्या उन्हें पैरों पे खड़े खड़े ये सब करना पड़ा?
यस, उनको कोर्ट में खड़े रह के ही एविडेंस देनी होती है, अनलेस एंड अंटिल जब तक कि कोई विचार ना हो या कोई बीमार ना हो, तो उन्होंने तो खड़े खड़े ही अपने न्यायालय में अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाई.
वकील साहब, ये बताइए कि लड़की की क्या हालत है, उसके पेरेंट्स की, परिवार की क्या हालत है उस दौरान भी और इस वक्त भी?
देखिए, जब ये ट्रायल चल रही थी तो वो लोग बहुत परेशान थे. एवरेज फैमिली थी, फाइनेंशियली उनको बहुत नुकसान हुआ, मेंटली बहुत टॉर्चर था, लगभग हर रोज उन्हें किसी न किसी तरीके से धमकियां, थ्रेटनिंग्स मिलती थी, उन पर प्रेशर माउंट किया जाता था, सोशल प्रेशर था, रिलीजियस था, इमोशनल था, फिजिकल था, मेंटल था, सब तरह का. तो उनकी जो सिचुएशन है उसके उसके लिए उसको मैं आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. ये तो समझी जा सकती है, जो उन्होंने फील किया है, जो उन्होंने ये टाइम पास किया है, वो वास्तव में बहुत ही खतरनाक था. बट आफ्टर द वर्डिक्ट गिवन बाय द ट्रायल कोर्ट दे आर हैप्पी, और अब उन्हें जो है वो विश्वास है कि उन्हें आगे भी न्याय मिलेगा.
जी, और ऐसा भी सुना है कि जो विटनेसेस थे, गवाह थे पीड़िता की तरफ से, उनमें से 3 गवाहों पर हमला भी किया गया था.
यस मैम, इसमें राहुल सचान जो इस केस का विटनेस था, उसको पर तो 13 फरवरी 2015 को कोर्ट प्रीमाइसेस में ही चाकू से हमला किया गया और उसे घायल किया गया. उसकी सिचुएशन वॉज वेरी क्रिटिकल, बट अल्टीमेटली ही वॉज सेव्ड, और रिकवर होने के बाद में he appeared before the court and he got his evidence recorded. Likewise, Mahendra Chawla was also one of the witness in Jodhpur's case. After recording of his evidence in the trial court at Jodhpur, Panipat, Haryana mein us par attack kiya gaya tha 13 May 2015 ko. Wo survive kar gaya, lekin Kripal Singh jo is case ka witness tha, uski evidence record hone ke baad mein Rajapur mein uske upar hamla kiya gaya 10 जुलाई 2015 को, और लेटर ऑन वो मर गया. तो फ्रॉम टाइम टू टाइम विटनेसेस को भी थ्रेटनिंग दी गई, विटनेसेस को मतलब डराने धमकाने के लिए प्रेशर माउंट किया गया, और ये बहुत ही मतलब अजीब सी हरकत रही कि मतलब ही अडॉप्टेड ऑलमोस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ टैक्टिक्स.
और आसाराम बापू के कैंप से क्या प्रतिक्रियाएं उठ रही हैं अब?
देखिए, कैंप से तो जो उनके ब्लाइंड फॉलोवर्स है वो यही कहते हैं कि ही इज एन इनोसेंट पर्सन एंड ही हैज बीन फॉल्सली इंप्लिकेटेड.
इन पर कुछ और भी अभी तक केस चल रहे हैं?
यस, केस चल रहे हैं गुजरात सूरत में, और रेप का केस चल रहा है जोधपुर में, एक पुलिस ऑफिसर को थ्रेटनिंग का और ये सब का केस चल रहा है. एक जोधपुर में FIR अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि जब आशाराम की बेल सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू की जा रही थी, देन फ्रॉम हिज साइड अ लेटर वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट शोइंग दैट अक्यूज आशाराम इज पासिंग स्टूल्स ऑन द बेड, एंड इट वाज सेड दैट इट वाज इश्यूड बाय द जेल सुपरिटेंडेंट जोधपुर, बट ऑन बीइंग इंक्वायर्ड दैट वेदर दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन और फॉर्ज्ड, इट वाज फाउंड फॉर्ज्ड, फॉल्स. तो जब सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि नो सच लेटर वाज एवर इश्यूड बाय द जेल अथॉरिटीज, तो एक्यूज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज इश्यूड डायरेक्शंस फॉर लॉजिंग ऑफ द FIR एंड फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बिफोर द कोर्ट. इस केस के अंदर मैम, मैंने जो है विक्टिम की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम, आई डिडंट चार्ज अ सिंगल पेनी बाय वे ऑफ फीस. मैंने ये पूरा ऑनरेरी वर्क किया है प्रो बोनो, और जो भी मेरा जो एक्सपेंडिचर था वो एक्सपेंडिचर जरूर मुझे उस फैमिली से मिला है पेपर वर्क का, और ये बट बाय वे ऑफ ही आई डिडंट चार्ज अ सिंगल पेनी.
वाह, और कुछ अंत में आप जोड़ना चाहेंगे?
हाँ, देखिए, ये ट्रायल जो है, इस ट्रायल से मतलब दो, देयर इज अ प्रोविजन इन पॉक्सो व्हिच सेज दैट एवरी एफर्ट शुड बी मेड बाय द कोर्ट सो एज टू कंक्लूड द ट्रायल विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस. इन दिस केस कॉग्निजेंस वॉज टेकन on 29th of November 2013, and the trial was required to be concluded within a period of 1 year, then up to December 2014. But because of the lengthy cross-examination and dilly-dally tactics adopted by the accused persons from time to time, the trial has been for almost 4.5 years. Ultimately, we got success, and the so-called Godman has been convicted by the court with a harsh punishment which has never been given to any accused in this country, in India.
तो अंत में आप यही कहेंगे कि सत्यमेव जयते, सत्य की जय हुई है?
Yes, yes. सत्यमेव जयते, सत्य परेशान कर सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं करता. हमें भी बहुत थ्रेटनिंग दी गई, मुझे भी बहुत थ्रेटनिंग दी गई, बहुत एल्योर किया गया, पैसा ऑफर किया गया, बट मेरे लिए ये सब कोई मैटर नहीं था. आई वॉज सिंपली कंसर्न विद इम्पार्टिंग जस्टिस और जस्ट टू प्रोवाइड जस्टिस, जस्ट टू हेल्प दी विक्टिम फैमिली, जो मैं समझता हूँ शायद ईश्वर की कृपा से मैं ये कर पाया, अपने माता पिता के आशीर्वाद से ये कर पाया.
आपकी इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत आभार. आपने बहुत महान काम किया है और पीड़िता को न्याय दिलाया है. थैंक यू सो मच.
थैंक यू.
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए.